श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15वां अध्याय श्लोक संख्या 4।
पौगंडलीला चैतन्या कृष्णस्याते सुविस्तृता विद्यारंभ मुखापाणे गृहणांता मनोहरा।
पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही। मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसी के बाद उनकी मनोहर शादी हुई। अनुवाद दोहराइए। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही। मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसी के बाद उनकी मनोहर शादी हुई। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के पौगंड लीला की कथा जारी रखेंगे। दो दिन से आदि लीला के अलग अलग लीलाएं हम सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले बाल्य लीला का वर्णन हुआ था। बाल्य लीला भगवान के जन्म से लेकर 5 साल की आयु तक। तत्पश्चात पौगंड लीला आरंभ होती है 5 साल की उम्र से। कल दोपहर हम यही चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला हाथे खड़ी से शुरू हुआ। हाथे खड़ी मतलब वो अनुष्ठान जिसमें कि जगन्नाथ मिश्रा ने उनको हाथों में एक खड़ी दी जिससे कि वो पहला अक्षर लिखना आरंभ करें, विद्यारंभ। यहां श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, विद्यारंभ मुखा पाणी गृहणांता मनोहरा। इस पौगंड लीला में उनके दो मुख्य कार्य रहे। पहले कि हाथे खड़ी के साथ उन्होंने विद्या प्राप्त करना आरंभ किया और दूसरी बात कि इस पौगंड लीला के अंत में उनका विवाह हुआ। तो बाल लीला उनके जन्म से शुरू होता है प्राकट्य से और अंत होता है हाथे खड़ी अनुष्ठान तक, और फिर हाथे खड़ी से शुरू होकर उनके विवाह तक पौगंड लीला अर्थात 5 साल की आयु से लेकर 10 साल की आयु तक। तो कल हम चर्चा कर रहे थे इन अनेक लीलाओं के बारे में, किस तरह से निमाई अलग अलग प्रकार की शरारत करते थे, गंगा जी पे तट पे जाके ब्राह्मणों को तंग करते थे, जो नव युवतियां वहां आई थी उनको तंग करते थे, किस तरह से तंग करते थे और किस तरह से ब्राह्मणों की और नव युवतियों की शिकायतें आई सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पास, इनके बारे में भी चर्चा हो रही थी कल। और आगे चल के विश्वरूप उनके बड़े भाई ने संन्यास लिया और जगन्नाथ मिश्रा और सची माता का हृदय टूट गया। सारे नवद्वीप के निवासी भी शोक के सागर में डूब गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया। दूसरे नवद्वीप वासियों ने भी उनको समझाया, शांत कराया। और जगन्नाथ मिश्रा बड़े चिंतित थे। जब उन्होंने देखा कि पढ़ाई में अभी काफी अच्छे हो रहे हैं निमाई, तो उन्होंने सोचा कि अभी विश्वरूप की तरह ये भी संन्यास ले लेगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद में हमें मालूम होता है कि यह संसार खोखला है, मिथ्या है, संसार में कोई दम नहीं है, कोई सुख नहीं है। तो विश्वरूप को यह ज्ञात हो गया तो विश्वरूप ने संन्यास त्याग दिया, संसार त्याग दिया और संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब सुनी प्रशंसा निमाय की कि कितनी जल्दी से ये सब सीख रहा है, तो जगन्नाथ मिश्र बड़े उदास हुए, चिंतित हुए कि अब जिस पथ के ऊपर मेरा बड़ा बच्चा चला गया उसी पथ के ऊपर भी ये कहीं चले न जाए। इसलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्ति निमाय के लिए बंद कर दी और फिर निमाय ने अपनी हरकत बढ़ा दी। अलग अलग तरह से वो शरारत करते रहे, उनके भी वर्णन कल कर रहे थे। और फिर आखिर में जो उनके पड़ोसी थे सभी ने आकर जगन्नाथ मिश्रा से निवेदन किया कि ऐसा ना करें, हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम उनको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, और आपका बच्चा ऐसा है कि खुद पढ़ना चाहता है, इतनी आतुरता है उसके अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन आप जबरदस्ती उसकी पढ़ाई बंद करा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण को एक अशिक्षित मूर्ख कोई बच्चा हो तो शोभा नहीं देता, ये बच्चा आप जैसा विद्वान होना चाहिए, इसलिए आप इसको अवश्य शिक्षा प्रदान करें। फिर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा ठीक है। तो इस तरह से निमाय की शिक्षा पुनः आरंभ हुई और आगे पौगंड लीला में जब शिक्षा आरंभ हुई तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि अभी समय आ गया है कि निमाय का उपनयन संस्कार होना चाहिए। उपनयन मतलब वो संस्कार जिसमें बच्चे की दीक्षा होती है, उसको उपवीत जनेऊ दिया जाता है और उसके बाद में वो गायत्री मंत्र का जाप आरंभ करता है। वास्तव में इसी समय के बाद वेद की शिक्षा आरंभ होती है, क्योंकि शास्त्रों का आदेश है कि वेद केवल उन लोगों को पढ़ने चाहिए जो कि द्विज हैं। द्विज मतलब द्विज, ज मतलब जन्म लेने वाला, द्वि मतलब दूसरा, जिन्होंने दूसरा जन्म लिया है केवल वही वेद का पाठ कर सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहलाते हैं, अर्थात ये जो उपनयन संस्कार है वो इन तीनों को हो सकता है और दीक्षा लेने के बाद में ये वैदिक दीक्षा कहलाती है। इस वैदिक दीक्षा के पश्चात फिर वो वेदों का पाठ कर सकते थे। जो ब्राह्मण थे वो तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य भी करते थे। जैसे कि सारे जो राजा महाराजा थे, राज ऋषि थे, वो भी तो शास्त्रों का पाठ करते थे दिन में। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन बड़े पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे। तो जो शूद्र हैं केवल उनके लिए संस्कार नहीं किए जाते, ये उपनयन ये भी एक संस्कार है। मनुष्य जाति में 10 विध संस्कार बताए गए हैं, प्रमुख 10 तरह के संस्कार हैं। वैसे और भी कई संस्कार हैं, 40 से अधिक हैं, लेकिन प्रमुख इनमें से हैं ये 10 विध संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार से आरंभ होकर अंत्येष्टि क्रिया अर्थात श्राद्ध तक चलती है। इतने सारे संस्कार होते हैं शुद्धिकरण के लिए। ये संस्कार वास्तव में शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं और खास करके ब्राह्मणों को करना चाहिए और साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य भी करते हैं, लेकिन शूद्रों के लिए मना है। इसलिए जब प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि समाज में कोई उत्पात हो रहा है, वो भी राम राज्य में, तो वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि अवश्य कोई शूद्र वेदों का पाठ कर रहा है। शूद्र मतलब जो अयोग्य है वेदों के पाठ करने के लिए, क्योंकि गलत आदमी के हाथ में ज्ञान आ जाता है तो फिर उत्पात हो जाता है, उपद्रव पैदा हो जाता है, और सही निकला प्रभु रामचंद्र जी का अनुमान। तो वैदिक पद्धति में द्विजों के लिए यह उपनयन संस्कार आवश्यक कहा जाता है, तो ये वैदिक दीक्षा है। लेकिन कलयुग में कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय और कौन वैश्य, कलौ शूद्र संभवः, कलयुग में सभी लोग शूद्र के बराबर हैं। वैश्य वृत्ति के थोड़े बहुत हैं, क्षत्रिय के बहुत कम और प्रामाणिक ब्राह्मण तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए वैदिक दीक्षा की पद्धति कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए इस कलयुग में पंचरात्रि का दीक्षा दी जाती है, जिसमें लोगों को वैष्णव बनाया जाता है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो तथाकथित। लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं भक्त बनने के लिए, थोड़े बहुत नियमों का पालन करते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, भक्तों के संग में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और सद्गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है, उनके आज्ञा पालन करने की इच्छा हो जाती है, तो उनको वैष्णव दीक्षा दी जाती है। दीक्षा मतलब आरंभ करना, अपने आध्यात्मिक जीवन जो है उसको आरंभ करते हैं दीक्षा के पश्चात। तो इस तरह से दीक्षा से एक व्यक्ति वेदों के पाठ करने के लिए, जो भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई, उनको ये वैदिक दीक्षा या उपनयन संस्कार दिए गए। इस उपनयन संस्कार के बाद में गुरु अपने पिता होते हैं और वेद अपनी माता होती हैं। इस तरह से नए माता नए पिता मिलते हैं, इसलिए इसको दूसरा जन्म कहते हैं, इसलिए द्विज, दूसरे जन्म लेने वाले। तो निमाय के भी ऐसे संस्कार होना था। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि अभी समय आ गया है, इसकी उम्र हो गई है, तो इसलिए मुझे भी उपनयन संस्कार कराना चाहिए इसका। तो उन्होंने बड़ा अनुष्ठान का आयोजन किया, अपने पड़ोसियों को, गांव में रहने वालों को, पहचान में जो थे उनको सबको बुलाया। सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास से अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आए। सभी लोग इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे, कोई ये व्यवस्था करता तो कोई दूसरी व्यवस्था करता। ब्राह्मण भी आए, मंत्रों का उच्चारण होने लगा और अंततः फिर निमाय को यज्ञोपवीत उपवीत प्रदान किया गया। और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं कि पहले ही निमाय का शरीर इतना सुंदर स्वर्ण रंग का, और उसके ऊपर जब ये नया उपवीत डाला गया तो ऐसे लग रहा था कि साक्षात अनंत शेष ने उस उपवीत, उस धागे का अवतार लेकर अपने प्रभु को आलिंगन किया है, इतना सुंदर लग रहा था। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अर्थात निमाय वो ब्राह्मण बन गए वास्तव में। अब ये तो लीला है भगवान की, भगवान को यज्ञोपवीत स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, उपवीत पहनने की क्या आवश्यकता है। ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न यति संन्यासवा, किंतु निखिल परमानंद प्रोद्यन गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं ना तो ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, मैं ना तो गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ हूं, मैं तो केवल गोपियों के, जो कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गोपियों के दासों का दास हूं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया, मैं साक्षात श्री हरि हूं लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में आया हूं। तो भगवान क्योंकि भक्त के रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने ये सारे संस्कार अनुष्ठान इनमें सब भाग लेना ठीक समझा, हमारे लिए उदाहरण पेश करने के लिए। इस तरह से उनका सुंदर उपनयन संस्कार हुआ और फिर उसके बाद में भगवान ने उस अनुष्ठान के समय अपना वामन स्वरूप दिखाया, क्योंकि निमाय चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। एते चांस कलह पुंसः कृष्ण स्तूप भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृड़यंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि अवतार कई हैं, लेकिन इन सारे अवतारों के उगम स्थान श्री कृष्ण हैं। सारे अन्य जो हैं वो अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं। इसकी चर्चा हम थोड़े दिन पहले कर रहे थे, वराह देव के प्राकट्य की चर्चा जब हो रही थी तो इसी बात को दोहराया गया था कि श्री कृष्ण अवतारी हैं और अन्य विष्णु, नारायण, वराह देव, वामन देव इत्यादि ये अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। वो भी श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो इस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी सारे भगवान के अवतार उपस्थित हैं जो कि श्री कृष्ण के अंदर हैं। और इसलिए इस उपनयन संस्कार के समय उन्होंने अपना वामन स्वरूप प्रदर्शित किया। वामन स्वरूप में हम देखते हैं कि भगवान की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित कराया। इतना शरीर का तेज था इनका कि उस प्रकाश को देखकर सभी लोग चकाचौंध रह गए थे। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि जब वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उस समय सारे ब्रह्मांड भर से देवी देवता आए और अलग अलग तरह के उपहार भेंट तरह उनको देने के लिए आए थे। सूर्यदेव ने कुछ दिया, सरस्वती ने कुछ दिया, लक्ष्मी देवी ने कुछ दिया। इस तरह से अलग अलग देवी देवताएं आई थी कुछ न कुछ भेंट देने के लिए। और जिस तरह से वामन देव उस समय तेजस्वी प्रकाशमान लग रहे थे तो उसी तरह उनके उगम स्थान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो अभी पौगंड अवस्था में निमाय के नाम धारण किए हुए लीला कर रहे थे, उन्होंने भी अपने तेज का स्विच चालू कर दिया। और फिर तेज ऐसा आया कि सभी लोग वहां बिल्कुल चकाचौंध रह गए। और इस तरह से जगह जगह से लोग वहां पर आए, उनको भेंट देने के लिए आए। और जैसे कि एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए, जब दीक्षा ले लेता है ब्रह्मचारी अपने गुरु से उपनयन संस्कार के बाद में, तो वो भिक्षा मांगने जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी का कार्य होता है भिक्षा मांगना। तो वामन ने जैसे अलग अलग देवी देवताओं से भिक्षा मांगी थी, उसी तरह से निमाय ने भी भिक्षा मांगी। एक ब्रह्मचारी की छड़ी ली हाथ में, साथ में गले में एक कपड़े का थैला लटकाया और इस थैले को सामने करते हुए वो नवद्वीप के निवासियों के पास में गए भिक्षा मांगने के लिए। और फिर सब लोगों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार उस थैली में कुछ न कुछ दान दिया। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि केवल नवद्वीप के निवासियों ने दान नहीं दिया, बल्कि सारे ब्रह्मांड से देवी देवता भी आए और ब्राह्मण का वेश पहनकर या नवद्वीप के निवासियों के पोशाक में आए और उन्होंने भी निमाय को दान दिया। सरस्वती देवी आई, लक्ष्मी देवी साक्षात आई और ऐसे वेश पहनकर आए जैसे कि किसी को लगे कि ये इस गांव के ही निवासी हैं। तो इस तरह से निमाय ने भिक्षा मांग ली और उपनयन संस्कार समाप्त हो गया। इसके बाद में जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि अभी मेरे लड़के को पाठशाला में भर्ती कराना चाहिए और इसकी अच्छे ढंग से शिक्षा आरंभ हो जानी चाहिए, जो कि अभी घर तक चल रही थी। तो निमाय की इच्छा थी कि गंगादास पंडित नाम के एक बहुत ही विद्वान पंडित ब्राह्मण थे नवद्वीप में, तो निमाय पंडित ने सोचा कि मुझे इनसे ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी से। अभी ये गंगादास पंडित वास्तव में सांदीपनी मुनि के अवतार थे। जैसे आप जानते हैं कृष्ण लीला में जब कृष्ण और बलराम मथुरा आए तो फिर वो 12 साल की उम्र में शिक्षा प्रदान करने गए उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में। तो गौर लीला में यही सांदीपनी मुनि ने अवतार लिया गंगादास पंडित का। तो बंगाल में इन पाठशालों को टोल कहते थे, ऐसे कई टोल हुआ करते थे, क्योंकि नवद्वीप शिक्षा और विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध था उस समय। तो गंगादास पंडित का टोल जो है सबसे मशहूर था, क्योंकि गंगादास पंडित इतने बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्रा ने कहा हाँ ये ठीक है, तो दोनों साथ में गए। जगन्नाथ मिश्र निमाई को साथ में लेकर गंगादास पंडित के घर में गए। तो गंगादास पंडित बैठे थे अपने विद्यार्थियों के संग में, और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को देखा तो तुरंत वो उठे और उनको आलिंगन कर लिया, और आलिंगन करके कहने लगे कि क्या सेवा मैं आपकी कर सकता हूं। तो उस समय जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मैं मेरे पुत्र को आपके हवाले करने आया हूं, कृपा करके इसका देखभाल कीजिए, इसे शिक्षा दीजिए, इसे अच्छा विद्वान बनाइए, ताकि वो अज्ञान के अंधकार से जाग जाए और कभी क्लास में न सोए, जैसे आप में से कई लोग सो रहे हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र ने गंगादास पंडित के हवाले अपने पुत्र को कर दिया और उनकी शिक्षा वहां पर आरंभ हुई। निमाई सबसे चतुर, सबसे बुद्धिमान शिष्य निकले। जो भी गंगादास पंडित कहते थे, एक बार उसको सुनने पर निमाई उसको याद रख देते थे, और इतने इतने निपुणता से वो तर्क करते थे, किसी बात का विश्लेषण करते थे कि कोई भी विद्यार्थी उनके सामने नहीं आ सकता था। गंगादास पंडित ने भी इस बुद्धि को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये बच्चे की बुद्धि बिल्कुल असाधारण है, आज तक मेरे जीवन में मैंने किसी ऐसे विद्यार्थी को नहीं देखा है। और निमाई जो भी कुछ कहते इतने विस्तार में और इतने सुंदर ढंग से शास्त्रों के दृष्टिकोण से उस तर्क को प्रस्तुत करते कि कोई उनके सामने कुछ कह नहीं सकता था, और अगर दूसरा कोई तर्क प्रस्तुत करता था शास्त्रों के आधार पर तो उस तर्क का खंडन कर देते थे। तो इस तरह से कोई उनके सामने आ नहीं सकता था, और यहां तक कि उनके जो वरिष्ठ विद्यार्थी थे वो भी सोचने लगे कि ये तो हमसे बहुत ज्यादा जानता है। लेकिन जब निमाई कुछ बोलते थे तो उस समय वो लोग केवल हंसते थे कि ये तो हमसे कम उम्र वाला है, इसके सामने हम क्या तर्क करेंगे। हालांकि अगर वो तर्क करते तो अवश्य हार जाते। तो इस तरह से गंगादास पंडित के टोल में निमाई ने बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं किए और उनके सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी रहे। और उसी समय जब 12 बजे दोपहर में उनकी पाठशाला समाप्त हो जाती थी तो वो लोग अपने मित्रों के साथ में गंगा जी के तट में जाते और वहां पर स्नान करते, और फिर वहां दूसरे लड़कों के साथ में झगड़े आरंभ कर देते। अभी क्योंकि इतने सारे टोल थे, इतने सारे पाठशालाएं थी नवद्वीप में, और हर एक पाठशाला में कितने सारे गुरु थे जो वैदिक ज्ञान सिखाते थे, खास करके व्याकरण और ज्योतिष, ये दो शास्त्रों का ज्ञान जो है नवद्वीप में होता था। तो अलग अलग पाठशालाओं के जो बालक थे, लड़के थे, वो सब गंगा जी में स्नान करने आते थे 12 बजे के समय, जब पढ़ाई समाप्त हो जाती थी। तो नौसुखिया होने की वजह से सभी लोग आपस में झगड़े करते थे। कोई कहता था कि अरे आपके गुरु की कोई बुद्धि नहीं है, दूसरा कहता अरे मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। जैसे कभी कभी आपस में संस्था में भी नौसुखिया भक्त अपने अपने गुरु के बारे में हमारे इस्कॉन में भी कहते मेरे गुरु की तरह कोई नहीं, अरे तुम्हारे गुरु नहीं। तो इस तरह से यहां भी बच्चे लड़के जो है आपस में तर्क वितर्क करने लगे, वाद विवाद करने लगे, और फिर तुम्हें हो जाता था, और फिर झगड़ा भी हो जाता था, मुक्का प्रहार भी हो जाता था। तो इस तरह से इनमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे झगड़ा करने में थे निमाई। सबको जाके कहते थे अरे ये क्या है, ये बकवास है, ये बेकार है, और झगड़ा करके सभी लोग जहां नवद्वीप का जो गंगा जी का तट था वहां देखा जाए तो इतने संख्या में लड़के लोग हैं, सभी लोग कोई कुश्ती कर रहा है, कोई मुक्का प्रहार कर रहा है, कोई तर्क वितर्क कर रहा है। तो इस उथल पुथल में, इस झगड़े में, इस कुश्ती में क्या होता था कि गंगा जी का जल जो है वो मिट्टी से भर जाता था, और जो महिलाएं वहां पानी भरने आती थी वो नहीं भर सकती थी क्योंकि सब मिट्टी का पानी आ जाता था। और वहां जो ब्राह्मण बैठे थे वो भी हैरान हो जाते थे कि वो भी अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर निमाय और दूसरे बच्चे जो है किसी को मुक्का प्रहार करके कूद जाते पानी में और दूसरे ओर गंगा जी के दूसरे तट में चले जाते। तो इस तरह से हल्ला मच जाता पूरा। दोपहर के समय सारे नवद्वीप निवासी सोचते थे 12 बजे आए कि अभी हल्ला शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से निमाय सबका नेता था हल्ला करने में। और अलग अलग घाट में नवद्वीप में अलग अलग घाट हुआ करते थे, जैसे कि बनारस में आपने देखा होगा अलग अलग घाट हैं जहां लोग जाके स्नान करते हैं। तो निमाय अलग अलग घाट में जाते थे जहां अलग अलग विद्यार्थियों के दल स्नान कर रहे होते थे और वहां जाके बड़े घमंड से उनको चेतावनी चैलेंज देते थे कि मेरे सामने कोई आ सकता है तर्क के लिए वाद के लिए, सामने होने की हिम्मत है किसी की? तो सारे जो शिष्य थे वो भी कहते थे अरे निमाय तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों है, इतना अहंकार क्यों है तुम्हारे अंदर, क्या पढ़ा तुमने, खास क्या ज्ञान है तुम्हारे अंदर? तो निमाय कहते थे कोई भी प्रश्न करो हमसे, हम बताएंगे हम कितने विद्वान हैं। तो कोई कहता ठीक है अभी बताओ व्याकरण का कोई विशेष प्रश्न पूछते। तो वो कहते ये तो बहुत आसान है लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनना चाहिए तुम्हें, ख्याल से ध्यान से सुनना चाहिए। तो फिर वो लोग कहते ठीक है। फिर निमाय ऐसे सुंदर ढंग से उसका विश्लेषण करते उसकी व्याख्या करते कि सभी लोग मुंह खोलकर चकाचौंध रह जाते कि ऐसे भी व्याख्या कोई कर सकता है। और ऐसा करके फिर कहते थे बोलो कोई कुछ कह सकता है, कोई सामना कर सकता है मेरा? तो सभी लोग कहते थे, सभी लोग इतने चकाचौंध हो जाते कि कहते निमाय वाह बढ़िया बहुत अच्छी व्याख्या की तुमने। पहले झगड़ा करने आते लेकिन निमाय की व्याख्या को सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते, स्तब्ध रह जाते। फिर बाद में उन्होंने निमाय से कहा ठीक है कल हम और एक प्रश्न करेंगे, हम पढ़ के आएंगे और प्रश्न करेंगे, आना जरूर। तो निमाय ने कहा ठीक है आऊंगा। तो इस तरह से रोज लीला होती थी। और निमाय की बुद्धि इतनी तेज थी कि आज तक नवद्वीप के इतिहास में ऐसा बुद्धि ऐसे बुद्धि का प्रदर्शन किसी ने नहीं किया था। जब कोई उनको चैलेंज करता था कि इस बात की व्याख्या करो तो वो करते थे, पहले रोकते थे कि दूसरा कोई करे, अगर करे तो उसका खंडन करते थे, अगर नहीं करे तो फिर व्याख्या आरंभ करते थे। ऐसे सुंदर ढंग से व्याख्या करते थे शास्त्रों के आधार पर, कोई भी उसके अंदर तनिक भी भूल ढूंढ नहीं सकता था। वो पूछते थे हरेक को क्या मेरे व्याख्या में कोई गलती है, कोई दोष है? कोई एक भी दोष ढूंढ नहीं सकता था। कहते थे बिल्कुल सही कहा तुमने निमाय। फिर निमाय कहते थे क्या मैंने सही कहा? अरे मैंने जो कहा इतने इतने दोष थे। फिर अपने ही व्याख्या में वो दोष निकालते और उस व्याख्या का खंडन करके एक दूसरा सिद्धांत खड़ा कर देते जिससे कि पहले सिद्धांत बिल्कुल नष्ट करा देते और दूसरे सिद्धांत को ऐसा लगता था कि यही बिल्कुल सही है, यही सत्य है। और फिर कहते इसमें कोई दोष है, कोई गलती है? सभी लोग सोचते कोई गलती नहीं, ये तो बिल्कुल परिपूर्ण है शास्त्रों के आधार पर, बिल्कुल इसमें तो कोई गलती नहीं है। फिर वो कहते अभी मैं और एक बात कहूंगा, और एक व्याख्या करते जिससे ये दूसरे सिद्धांत का खंडन करते थे और इसको बिल्कुल गलत साबित कर देते थे और इतने इतने जो दोष है वो साबित कर देते थे। तो इस तरह से तीसरे सिद्धांत के अनुसार पहले दो सिद्धांतों को नष्ट कर देते थे और फिर बोलते थे बोलो और कोई है सामने आने वाला? सभी लोग हाथ जोड़ के बोलते थे बाबा हम अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। कभी कभी जब तीसरे सिद्धांत को साबित करते थे तो पुनः पहले सिद्धांत को स्थापित कर देते थे, जो पहले उन्होंने किया था जिसका खंडन किया था उस खंडन का खंडन कर देते थे। इस तरह से जो कसरत बुद्धि से निमाय किया करते थे उस कसरत को कोई समझ नहीं सकते थे कि कैसे ये शब्दों का तोड़मोड़ करते हैं, किस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं, दर्शन प्रस्तुत करते हैं, कोई समझ नहीं पाया। इस तरह से निमाय का पौगंड जीवन जो है ऐसे चलता रहा। तो इस तरह से निमाय लीलाएं करने लगे। एक बार निमाए प्रसाद ले रहे थे अपने पिता और माता के संग, और उसके पश्चात उन्होंने तांबूल लिया। तांबूल मतलब पान। तो पान खाने का शौक बहुत लोगों को है, खास करके पूर्व प्रांतों में तो बहुत ही। आप जहां जाएंगे उड़ीसा में और कई जगहों में, रास्ते में कोई शायद ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके साथ में बात कर सकता है। क्यों बात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मुंह में पान है तो बात ही नहीं करेगा, बात करना भी नहीं चाहिए। बात करेगा तो आपका अभिषेक हो जाएगा, पान के लाल लाल अभिषेक आपका हो जाएगा। और बात भी करते हैं क्योंकि मुंह में पान होता है तो यूं बात करते हैं वो। तो उस प्रांत में पान की बहुत इच्छा है, लोगों को पान चबाते रहते हैं। तो निमाय ने वहां प्रथा थी तो वो भी तांबूल चबा लिया, और जैसे ही तांबूल चबा लिया, क्योंकि एक प्रकार का मद्य पदार्थ होता है, मादक द्रव्य होता है, तो निमाय तुरंत बेहोश पड़ गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि वास्तव में जिस तरह से एकादशी के दिवस पर हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, एक नियम है, उसी तरह से भक्तों को चाहिए कि उसे तांबूल और पान नहीं खाना चाहिए, भले वो विष्णु को भोग चढ़ाए क्यों न हो। विष्णु खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। तो उन्होंने बताया कि निमाय पंडित निमाय ने तांबूल खा के बेहोश होकर उदाहरण दिया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पंचरात्र का विधि में ये एक नियम है कि हमें भगवान को तांबूल देना चाहिए। तो तांबूल या पान भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन वैष्णव खुद नहीं लेते, कोई दूसरा चाहे तो ले जाए, लेकिन भक्त खुद नहीं खाते। तो ये चेतावनी दी है प्रभुपाद जी ने कि होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये मादक द्रव्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, निमाय के लिए कौन सा बंधन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और खाने की क्षमता भी है। ऐसा नहीं कि ये तांबूल उनके लिए इतना शक्तिशाली था कि उनको बेहोश पड़ना पड़ा, ये भी उनकी लीला है। कुछ साबित करना चाहते थे बेहोश होकर, तो बेहोश हो गए, और फिर बेहोश हो गए तो सारे वहां घर के लोग चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। जगन्नाथ मिश्र सची माता ने ठंडा पानी उनके मुख पर आंखों में डाला, फिर होश आ गया, और उठकर वो कहने लगे कि एक बात विचित्र अनुभव मुझे हुआ, स्वप्न आया। वो क्या है? विश्वरूप मेरे स्वप्न में आए। विश्वरूप ने जब तक संन्यास ले लिया था, आपको याद होगा, तो विश्वरूप मेरे सपने में आए और मुझे साथ में हाथ पकड़कर लेकर गए और कहने लगे तुम भी संन्यास ले लो। और मैंने कहा अरे मेरे अनाथ माता, मेरे अनाथ पिता घर में हैं, उनका कौन देखभाल करेगा, और वैसे भी मैं तो बच्चा हूं, संन्यास के बारे में मैं क्या जानता हूं, तो मैं तो घर जाऊंगा, उनको देखभाल करूंगा, मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करूंगा, और इस तरह से मैं भगवान श्री हरि की सेवा करूंगा। तो उस समय विश्वरूप ने कहा हां जाओ, और सची माता को मेरे कोटि कोटि प्रणाम करना मेरी ओर से। तो इस तरह से मैंने विश्वरूप को जवाब दिया। इस बात को सुनकर जगन्नाथ मिश्रा का हृदय थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा भी, दूसरा बेटा भी संन्यास ले लेगा, पहला तो गया सो गया, लेकिन दूसरा भी जाए तो हमारा प्राण हमें त्यागना पड़ेगा, हम जी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से निमाय ने जब ऐसे कहा तो दोनों शांत हो गए। फिर दोनों निमाय ने दोनों को, अपने माता पिता को शांत कराया कि मैं हमेशा आपकी सेवा करते रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। तो इस तरह से निमाय ने अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देना आरंभ किया, और इतने पढ़ाई करते थे कि इसको जगन्नाथ मिश्र देखकर बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन किसी को बोलते नहीं थे। निमाय जब अपने पढ़ाई के बाद गंगा जी के तट पर अपना कार्य करके, अपनी लीला करके लौट के आते थे, फिर सबसे पहले वो विष्णु गृह में जाकर शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, बिल्कुल अधिकृत पद्धति के अनुसार वो पूजा करते, और फिर तुलसी महारानी को जल अर्पण करके फिर अपना भोजन कर लेते। प्रसाद के बाद तुरंत एक कोई सुनसान जगह ढूंढ लेते जहां पर जाकर अपने पुस्तकों को लेकर वहां पढ़ाई करने बैठ जाते, और फिर सारे दिन भर उस पढ़ाई में बिल्कुल मग्न रहते। उनको कोई पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, इतने मग्न हो जाते अपने ग्रंथों में। काश हम भी हम प्रभुपाद की किताब में ऐसे मग्न हो सकते, काश हम हमारे अंदर भी ऐसी ही इच्छा हो जाती कि हम अपने कार्य करें दिन के और थोड़ा समय निकालकर कोई सुनसान जगह जाके ढूंढे जहां हम भी बैठ के प्रभुपाद की किताब पढ़ सकें और उतने ही आतुरता से पढ़ें। तो जगन्नाथ मिश्र ने ये दृश्य देखा तो वो आनंद के सागर के लहरों में झूमते रहे, इतना आनंद आया उनके बच्चे को ऐसे देखकर। और इस तरह से समय बीतता गया और निमाई और भी ज्यादा विद्वान होता गया। और एक बार ऐसे हुआ कि जगन्नाथ मिश्र प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान से कह रहे थे कि ये जो मेरा निमाई है इसकी आप सुरक्षा करो, क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है। और इस तरह से वो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि किसी न किसी तरह से आप निमाई की रक्षा करो। निमाई सुन रहे थे तो निमाई हंसने लगे, है वही श्री कृष्ण, उनके रक्षा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जगन्नाथ मिश्र वात्सल्य भाव में ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो थोड़े दिन बाद में जगन्नाथ मिश्र कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से अपने विष्णु ग्रह में, अपने घर के मंदिर में, कि हे भगवान कृपा करके मेरे निमाई को आप गृहस्थ बनाइए, आप उसे कहीं ना कहीं जल्दी से स्थित करिए, इस घर को छोड़ने के लिए आप मत उसे अनुमति दीजिए। तो सची माता पास में थी, सची माता ने पूछा आप ऐसा क्यों वरदान मांग रहे हैं भगवान से, ऐसी क्या बात है। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा मुझे कल रात एक स्वप्न आया, स्वप्न में मैंने देखा कि अपना निमाई उसने सर मुंडवा लिया है और शिखा भी काट दी है, क्योंकि पहले यह था कि जो शिखा काट संन्यास लेते हैं तो शिखा भी काट देते हैं, मतलब मायावादी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में सर मुंडवा लेते हैं लेकिन शिखा रखते हैं। लेकिन मायावादी संप्रदाय में जब तक साधक ब्रह्मचारी होता है सर मुंडवा लेता है लेकिन शिखा रखता है, लेकिन संन्यास लेता है तो शिखा भी काट देता है, ये मायावादी संप्रदाय में प्रथा है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में शिखा हमेशा रखते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में भी संन्यास आश्रम में भी, क्योंकि शिखा रखने से कोई जगह छोड़नी चाहिए भगवान श्री कृष्ण को खींचने के लिए, अगर कोई इधर उधर चले भी जाए तो खींचने के लिए वापस शिखा रखते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मैंने देखा कि निमाई ने अपना सर मुंडवा लिया है, शिखा भी नहीं है, और बड़े प्रकाशमान गहरे वस्त्र में, सन्यासी के वस्त्र में वो बिल्कुल हजारों सूर्यों के समान प्रतीत हो रहा है, और वो कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, सब एक साथ में, और कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन कर रहा है, और गली गली में जाकर ये कीर्तन कर रहा है, और उसके साथ में अद्वैत आचार्य है और जो हमारे नवद्वीप के वैष्णव हैं वो सब हैं, और उनके संग में अनंत शेष हैं, और फिर निमाय अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, और लेटकर फिर उन्होंने सबके ऊपर अपना अपने चरण डालना आरंभ किया, आशीर्वाद दे रहे थे सबको अपने चरणों से। और इस तरह से फिर वो आए और जगन्नाथपुरी चले गए नीलाचल में, और वहां वो कीर्तन करते रहे। तो ये दृश्य मैंने देखा, मेरी नींद खुल गई, और अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा लड़का संन्यास ले लिया, इसने संन्यास ले लिया तो सची माता ने उनको शांत कराया और कहा ये तो आखिर स्वप्न ही था, अभी तो निमाय बालक है, उसे क्या मालूम संन्यास क्या चीज है, अभी तो केवल अपने पढ़ाई को जानता है, सोचता है कि विद्या ही ये ज्ञान ही सब कुछ है, अपने विद्या में इतना वो मग्न है कि बस और कुछ जानता ही नहीं है वो, और कभी वो हमारा संग छोड़ेगा नहीं, और उसने कह भी दिया है कि वो हमारे साथ में रहेगा, आपको याद है विश्वरूप के का स्वप्न आया उसको, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र भूल नहीं पाए इस बात को, और थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। और जगन्नाथ मिश्र के देहांत होने के बाद सची माता बिल्कुल दुख के सागर में डूब गई, और केवल एक वजह से वो जीवित रह पाई, क्योंकि वो अपने बेटे निमाय का सर्व आकर्षक मुखारविंद देखती रही, और यही एक दृश्य उनके जीने के लिए एक सहारा रह गया, एक प्रेरणा रह गई, और उधर निमाय भी बड़े दुखी हो गए, वो भी फूट फूट के रोने लगे। और फिर निमाय ने सोचा कि अभी मेरी माँ अकेली है तो इसको सहारा मुझे देना चाहिए, इसलिए अगर मैं अपने आप को संभाल नहीं लूंगा तो मेरी माता जी का क्या होगा। तो इस तरह से निमाय अपने माता को सहारा देते लगे और कहने लगे कि जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कोई चिंता नहीं करना। तो सची माता भी संभल गई और वो केवल एक कारण के लिए जीने लगी, और वो है निमाय के लिए। और जीने के लिए कोई कारण नहीं था उनको, उनका पूर्ण जीवन निमाय के ऊपर आधारित था। वो खाती थी, उठती थी, बैठती थी, सोती थी, सब कुछ करती थी केवल निमाय के लिए। और निमाय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और जैसे जैसे थोड़ी बहुत उनकी उम्र बढ़ती गई तो निमाय ने कभी कभी अपना भगवत स्वरूप भी दिखाया। किस दृष्टि से? उनका रूप दिखाकर नहीं। भगवान स्वराट है, स्वराट का मतलब है कि पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं, कोई नीति का की सीमा नहीं है कि भगवान के लिए ऐसा करना ठीक है, वैसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना उचित है, वैसा करना उचित नहीं है। हमारे ऊपर मनुष्य समाज में, भौतिक संसार में बहुत सारे नियम होते हैं, नीति के बंधन होते हैं, धर्म के बंधन होते हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसे कोई बंधन सीमाएं नहीं है, इसलिए वो स्वराट कहलाते हैं। तो निमाय ने भी अपने पौगंड अवस्था में ऐसे ही अपने स्वराट होने की जो पद है उनका, वो प्रदर्शित किया। कभी कभी वो ऐसे क्रोधित हो जाते थे कि कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर उनको कोई चीज चाहिए थी तो ठीक उसी क्षण उनको चाहिए थी, और अगर नहीं मिल जाता उस समय तो ऐसा उपद्रव पैदा कर देते कि तहस नहस हो जाता सब जगह, और कोई उनको कुछ कहने के लिए काबिल नहीं था, किसी को साहस नहीं होती उनके सामने आने के लिए ऐसे क्रोध के समय। ऐसी ही एक लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं, जिसको सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि निमाय जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, इन्होंने ऐसे सब कार्य क्यों किए। इतना ही कह सकते हैं कि भगवान स्वराट हैं, उनकी लीलाएं अचिंत्य हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी समय कैसे भी कर सकते हैं। तो एक बार निमाय ने अपनी माता सची देवी से कहा कि मैं गंगा जी में स्नान करने जाना चाहता हूं, मेरे लिए तेल, अमलकी और थोड़े कपड़े तैयार रखना, और हां मुझे चंदन भी चाहिए और एक हार भी चाहिए, मैं गंगा देवी की पूजा करना चाहता हूं। तो बाकी सब सामग्री तो तैयार थी, लेकिन सची माता ने कहा हार मैं अभी लेने जा रही हूं, अभी लावती हूं। तो जब निमाय को पता चला कि सची माता ने कहा कि अभी लेने जा रही हूं, इसका मतलब अभी है नहीं, लेने जाना है, तो तुरंत ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि मानो रुद्रदेव को जिस तरह से सृष्टि के संहार करते समय गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वैसे क्रोधित हो गए। और तुरंत उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अभी लेने जा रही हो, अभी लेने जा रही हो। और फिर हाथ में छड़ी लिया, और छड़ी लेकर, लाठी लेकर सब कुछ तोड़ फोड़ करना आरंभ कर दिया घर में। और जो भी दूध के मटके थे, घी के मटके थे, पानी के मटके थे, सब तोड़ दिया। और घर में घी के, तेल के, पानी के, दूध के जो नदियां बहने लगी, और साथ साथ में जो अलग अलग बर्तनों में, मटकों में कहीं अनाज रखा था, कहीं गेहूं, कहीं चावल, कहीं शक्कर, कहीं नमक, कहीं ये कहीं वो मसाले अलग अलग तरह के, सब मटकों को फोड़ दिया, पितर पितर कर सब नीचे गिर गए। और ये सारे जो पदार्थ हैं वो दूध, नदी, ये तेल इत्यादि के नदी में सब साथ में बहने लगे। सची माता बाकी सब दूर दूर से देख रहे हैं, कोई सामने आने के लिए उनका साहस नहीं था, सब पीछे होकर देख रहे हैं। निमाए बोल चिल्ला चिल्लाते जा रहे, अभी नहीं है, अभी लेने जाना है, अभी लेने जाना है, और तोड़फोड़ करने लगे। सच्ची माता कभी कभी सूखे जो पदार्थ हैं खाने के वो ऊपर छत से लटका कर रखती थी, कोई खिले के ऊपर लटका के उसे कपड़े में बांध कर फिर वो लटका के रखती थी ऊपर, तो ऐसे कई जगह लटका के रखा था। तो सच्ची माता ने सोचा कम से कम वो तो बचाए रखे, लेकिन पीटने लगे, खिड़की तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए और दीवारों को पीटने लगे जोर जोर से, और आखिर जब दीवारों को भी पीट दिया तो घर के बाहर आंगन में गए, वहां बड़ा वृक्ष था, वृक्ष को पीटने लगे, और सच्ची माता बिल्कुल कोने में छुप गई अपनी जान को बचाने के लिए पीछे। और जब वृक्ष को पीटने के बाद में और कुछ था नहीं पीटने के लिए, मारने के लिए, अपने माता को हाथ नहीं लगाया, वो एक संभल गए, छुआ नहीं, और फिर वो वहीं पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। और उन्होंने अपने दृष्टि से अपने योग माया शक्ति को निमंत्रित किया और फिर वहीं पर योग निद्रा में रह गए, आंगन के जमीन में वहां पर रह गए वो। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, जिनकी सेवा अनंत कोटि लक्ष्मी देवियां करती हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और मालिक हैं, जो अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं और जिनके गुणगान करने के लिए अनंत शेष के हजारों हजार मुखारविंद भी जो अनादि काल से चर्चा करते आ रहे हैं और करेंगे अनंत काल तक, ऐसे व्यक्ति जो सारे सृष्टि के स्रोत हैं, वो अभी सच्ची माता के आंगन में बिल्कुल कड़क जमीन के ऊपर मिट्टी में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो ये सब दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां जो भी लोग एकत्र हुए थे उनकी क्या दशा हुई होगी। तो इस तरह से सच्ची माता फिर गई निमाई के पास में और धीरे धीरे से शांति से कहा, निमाई अभी उठ जाओ, और फिर उनको शरीर पोंछ लिया। और तब तक उन्होंने हार की व्यवस्था कर ली थी, तो हार भी उनके सामने था, सब कुछ था। और निमाई जब जाग गए अपनी योग निद्रा से तो देखा हार सब कुछ है, तो शर्मा गए, उनको पता चला कि मैंने क्या हरकत की थी। तो उस समय सच्ची माता ने कुछ नहीं कहा। फिर निमाई चले गए नदी के तट पर और वहां पर उन्होंने गंगा जी की पूजा की और फिर लौट के आए। जब लौट के आए तो सच्ची माता ने भोजन खिलाया, जो भी कुछ बचा था खिलाकर फिर शांति से सच्ची माता ने कहा कि अरे निमाई, तुम बार बार ऐसे सब चीज का तहस नहस कर देते हो, ऐसे सब कर देते हो घर में, अभी तुम खाओगे क्या? तुम्हारा ही नुकसान होता है, ये सब किसका है? जिन चीजों को तुमने तोड़ा है किसी और का तो नहीं है, तुम्हारा खुद का है, नुकसान किसका हुआ? तुमने ही तो अपना ही सब कुछ तोड़ दिया। अभी सारा घर में जो भी अनाज है वो भी नष्ट हो गया, दूध नहीं, कुछ नहीं घर में, अब कल से खाओगे क्या? वैसे भी हम गरीब हैं और जो भी हमारे पास था वो भी नष्ट हो गया। तो बहुत हल्के ढंग से बोल रहे थे। तो निमाई ने जवाब दिया, कृष्ण भगवान सबके देखभाल करने वाले हैं, क्यों चिंता करती हो, पालन पोषण करने वाले वो है। सच्ची माता ने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि सच्ची माता पृथ्वी माता की तरह सहनशील थी, दिन रात ऐसे जब हरकतें होया करती थी तो बिल्कुल सहन करती थी, एक शब्द नहीं बोलती थी। जिस तरह से कभी कभी यशोदा माता को वृंदावन में कृष्ण के बाल्य अवस्था और पौगंड अवस्था में ऐसी लीलाएं हरकतें जो होते थे वो सहन करने पड़ते थे, कितने नटखट थे कृष्ण, उसी तरह से निमाय भी नटखट थे। तो जिस तरह से यशोदा माता ने सहन किया उसी तरह से सच्ची माता को भी सहन करना पड़ा। तो उनकी सहनशीलता पृथ्वी माता के बराबर थी, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं। क्योंकि पृथ्वी माता के प्रति हम सब कितना आक्रमण करते हैं, दिन रात ठोकम ठोकी चलती रहती है पृथ्वी के ऊपर, कितना हम कष्ट देते हैं पृथ्वी माता को, लेकिन पृथ्वी माता कुछ नहीं कहती। तो इसी तरह से सच्ची माता भी सहन करती रही, केवल इसलिए कि वो निमाय को इतना प्रेम करती थी। तो उस दिन जब ये तहस नहस हो गया था, तो जब सच्ची माता ने कहा था कि घर में कुछ नहीं है तुम क्या खाओगे, तो उस दिन जब पाठशाला से होकर निमाए घर में चले आए तो उन्होंने सची माता के हाथ में 2 तोला सोना रख दिया, सोने के 2 सिक्के 2 तोले के रख दिए और कहा कि इनको बेचो और जो भी पैसा आएगा इससे घर चल जाएगा। तो सची माता आश्चर्यचकित हो गई और थोड़ा घबराहट भी उनको हो गया कि बार बार जब मेरा लड़का ऐसे नष्ट कर देता है कुछ, या बार बार जब घर में किसी चीज की कमी होती है या धन धान्य समाप्त हो जाता है तो ये लड़का मुझे आके सोना दे जाता है। कहां से लाता है ये सोना? क्या कोई इसको दान देता है या कहीं वो जमीन से निकालता है या कोई योग सिद्धि से कुछ प्रकट कर देता है? पता नहीं कहां से लाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, बार बार ये लड़का ऐसे करते रहता है। क्या अद्भुत शक्ति है ऐसी, कहां से ये सोना ले आता है, क्या पता। इस तरह से सची माता जो है वो आश्चर्यचकित रह जाती और सोचती ठीक है। तो इस तरह से घर चलता रहा क्योंकि आखिर निमाई पंडित भगवान श्री कृष्ण तो अनंत कोटि लक्ष्मियों के स्वामी हैं, तो जिस घर में नारायण है वहां लक्ष्मी तो होनी ही चाहिए, लक्ष्मी की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी अपने भक्तों को कभी कभी कृष्ण भगवान ऐसे चिंता में डालते हैं उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हमें कितना सहनशील रहना चाहिए। जिस तरह से निमाई ने अपने घर में तहस नहस मचा दिया था, कभी कभी भक्तों के जीवन में भी उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं, कई कष्ट आते हैं, तो हमें भी सची माता की तरह सहनशील रहना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये भी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, भगवान हमारे प्रेम को और गाढ़ा बनाना चाहते हैं और मीठा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारी ऐसी परीक्षा लेते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है तोड़ फोड़ लेते हैं। तो इस तरह से सची माता अपने पुत्र निमाई की सेवा करती रही और जैसे निमाई की उम्र बढ़ती गई उनका सौंदर्य बढ़ता गया। ऐसे प्रतीत होता था कि साक्षात कामदेव कंदर्प, उनका जो सौंदर्य है निमाई के सौंदर्य के सामने आकर वो झुक रहा है। जैसे कि ऐसा सौंदर्य जो कि आज तक शायद पृथ्वी में किसी ने नहीं देखा था, जो भी निमाई को देखते थे हालांकि पौगंड अवस्था में बालक ही थे, ऐसे सौंदर्य को देखकर वो अपने आंख हटा नहीं सकते थे उसके दिव्य शरीर से। सोचते थे कि ऐसा सौंदर्य भी संभव है संसार में। तो इस तरह से निमाई अपने सुंदर वस्त्रों से, अपने उनके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह थे और आंख जैसे कमल की तरह और बाल घुंघराले काले काले। तो इस तरह से निमाई ने अपने सौंदर्य से सबका हृदय आकर्षित कर लिया। उस समय निमाई पढ़ाई में और आगे आगे चलते गए और गंगादास पंडित बड़े प्रसन्न हुए निमाई से, क्योंकि जो भी गंगादास पंडित सिखाते थे निमाई सब कुछ जान लेते थे। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सबसे अच्छे विद्यार्थी ही नहीं आगे चल के सबसे बड़े तुम अध्यापक भी बनोगे। तो निमाई ने कहा गुरुदेव आपका वरदान जिसको मिल जाता है वो अध्यापक क्यों, उसको भट्टाचार्य का जो पद है वो अवश्य मिल जाएगा, सबसे बड़ा वो विद्वान हो जाएगा। इस तरह से निमाई पंडित ने अपने पाठशाला में, गंगादास पंडित के पाठशाला में ये श्रेय प्राप्त किया और गंगादास पंडित ने घोषणा की कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी है। निमाई अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते गए और केवल विद्या, ये भौतिक विद्या, व्याकरण की विद्या, ज्योतिष की विद्या, इसी में केवल मग्न रहे, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। उधर बाहर समाज में भक्ति के नाम निशान नहीं थे, किसी को भी भक्ति में, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं थी, सारे वैष्णव उदास थे, दुखी थे। जैसे कि पहले हम वर्णन कर चुके हैं कि निमाई के बाल अवस्था में भी ऐसी थी, उनके प्राकट्य के पहले भी ऐसी अवस्था थी और पौगंड अवस्था में भी यह चलता रहा। नास्तिकवाद बढ़ता रहा, लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं, केवल अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, देवी देवताओं के लिए। तो भक्त लोग बड़े निराश थे, परेशान थे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि क्या दशा है, दुर्दशा है समाज की, कृपा करके उनको आप कृष्ण भक्ति का फल दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये सारे लोग नरक में जा रहे हैं। और वो लोग जाके समाज के लोगों को कहते वैष्णव कि हे लोग जरा सुनिए, अभी तुम्हें ये सब आपको ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है जो इतना मूल्यवान है, इस मनुष्य देह को आप कृपा करके कृष्ण भक्ति में इस्तेमाल कीजिए, आपका जो कीमती मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ मत गवाइए। इस तरह से वैष्णव इधर उधर परेशान अवस्था में अपने आप में आकर कृष्ण कथा करते, कृष्ण कीर्तन करते, और उधर दूसरी ओर निमाय अपने वाद विवाद में मस्त रहते थे। और इस तरह से वाद विवाद करते और एक घमंड की अवस्था में दूसरों का तिरस्कार करते थे और उनको छेड़ते थे बारंबार। और जब भी वो देखते थे कि कोई व्यक्ति अकेले शास्त्रों को पढ़कर, मतलब बिना कोई अध्यापक के अकेले शास्त्रों को पढ़कर वो ज्ञानी बनना चाहता है, तो उसको जाके छेड़ते थे और कहते थे कि तुम अकेले शास्त्र पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ पाओगे? पहले मैं जो कह रहा हूं कम से कम उसका तो तुम खंडन करो, मैंने जो व्याख्या की है उसको समझने का प्रयास तो करो, फिर जाके आगे शास्त्र अपने आप पढ़ना। निमाय कहना ये चाहते थे कि मुझे अध्यापक स्वीकार करो, क्योंकि उस समय वास्तव में जो दल हुआ करते थे, हर एक पाठशाला में भी गुरुओं ने दल बनाए हुए थे 3, और आपस में वाद विवाद होता था, और कोई विषय को लेकर, व्याकरण की कोई पॉइंट को लेकर उनमें चर्चा होती थी। और जब चर्चा हो जाती थी, वाद विवाद खत्म हो जाता था, तो सभी लोग अपने अपने दल में जाकर फिर चर्चा करते कि वाद विवाद के पॉइंट्स जो हुए थे चर्चा, उनके बारे में डिस्कस करते थे कि हाँ ये गलती थी, ये सही बात हुआ, ये सही हुआ। तो उस तरह निमाय के भी कभी एक दल था, सबसे बड़ा दल निमाय का था, क्योंकि निमाय जैसा विद्वान विद्यार्थी और कोई नहीं था। तो उनके संघ में सारे जो विद्यार्थी थे उनसे सीखते थे व्याकरण, और निमाय उनको सिखाते, और वाद विवाद के समय भी वो विद्यार्थी उनके संघ में रहते, और फिर निमाय अपने दल के साथ में बाद बैठकर चर्चा करते। तो इस तरह से निमाय की कक्षा में हम उम्र वाले कई और महान व्यक्ति थे जो आगे चल के उनके बड़े भक्त बने। एक थे मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता वास्तव में वैद्य थे, ये रुद्रदेव के अवतार हैं, अंश अवतार, वैसे ये हनुमान हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी के शुद्ध भक्त, उनके अवतार, और साथ में श्री कमलाकांत थे, और ऐसे कई भक्त थे। मुरारी गुप्ता की भूमिका चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुरारी गुप्ता उनके कक्षा में होने के नाते उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा इनकी लीलाएं, वो कैसे कक्षा में थे, विद्या कैसे प्राप्त करते थे, किस तरह से वाद विवाद करते थे, ये मुरारी गुप्ता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, और फिर उन्होंने इनकी सूत्र रूप में लिखा था। और इसीलिए निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला का वर्णन मुरारी गुप्ता के सूत्रों से हो जाता है, और इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि मुरारी गुप्ता के सूत्रों के आधार पर वृंदावनदास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है, और मैंने ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला लिखी है, और महाप्रभु के मध्य लीला और अंत लीला ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सूत्रों के आधार पर लिखी गई हैं। तो मुरारी गुप्ता ये ब्राह्मण थे, और हमेशा निमाय जाकर उनको टोकते थे, छेड़ते थे बिना कारण के। और जब उन्होंने देखा कि मुरारी गुप्ता अकेले शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको इसी ढंग से जाके छेड़ने लगे। और हर बार जब भी निमाय मुरारी गुप्ता को छेड़ते थे, हालांकि वो रुद्रदेव के अवतार थे जो कि बहुत जल्दी क्रोधित हो सकते हैं, फिर भी मुरारी गुप्ता कभी भी क्रोधित नहीं हुए, कण मात्र भी, लेश मात्र भी उनको क्रोध नहीं प्रदर्शित करते थे, वो शांति से सुनते थे। और इसलिए महाप्रभु आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कैसे मैं इतना छेड़ रहा हूं इसको, लेकिन बिल्कुल ये क्रोधित नहीं हो रहे हैं। तो एक बार जब छेड़ने के बाद में मुरारी गुप्त ने कहा कि तुम क्यों इतने घमंडी हो, क्यों छेड़छाड़ करते रहते हो, तो महाप्रभु ने कहा तुम अकेले शास्त्र पढ़ना चाहते हो, पहले मैं जो बता रहा हूं वो तो ठीक से करो, तुम ये व्याकरण जो है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम वैद्य हो, जाओ तुम्हारे वैद्य का ज्ञान पढ़ो, वहां जाके कौन सी जड़ी बूटी निकालना, कौन सा पत्ता निकालना वो सब सीखो और बीमार लोगों का इलाज कराओ। यहां व्याकरण के शास्त्रों में कोई कफ पित्त वायु और अजीर्ण इनके बारे में कुछ नहीं है, तुम वैद्य हो, वैद्य का काम करो, ये व्याकरण की बातें जो है ये कुछ अलग है, निराली है, ये तुम सबके लिए नहीं है। तो मुरारी गुप्ता वो भी बड़े विद्वान थे वास्तव में, तो उन्होंने कहा तुम क्यों केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो निमाई, आज तक जब भी हमने वाद विवाद किया तो सारे तुमने जो भी कुछ पूछा उसका सही सही जवाब मैंने दिया है और ऐसी कोई कमी नहीं रही मैंने जो व्याख्या की है, तो क्यों इतने घमंड से बार बार छेड़ते रहते हो, अभी किस बात की तुम्हें व्याख्या चाहिए बताओ। तो निमाई ने कहा जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसकी व्याख्या करो बोलो। तो मुरारी गुप्ता जो व्याख्या करना आरंभ कर दी उन्होंने, और फिर निमाई ने उसका विरोध किया और फिर मुरारी गुप्ता ने उसका फिर से विरोध किया, इस तरह से वाद चलता रहा और पहली बार इसके अंत में प्रभु ने अपने सेवक के सामने हार मान ली। मुरारी गुप्ता वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं और निमाय के चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध एक नित्य पार्षद है वो। तो पहली बार निमाय ने कहा हाँ बिल्कुल सही हो तुम, और निमाय ने मुरारी गुप्ता के शरीर पे हाथ रखा और जैसे ही निमाय के हाथों का स्पर्श हुआ तो उसी क्षण मुरारी गुप्ता के शरीर में एक ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक आनंद, मान लीजिए बिजली का करंट जैसा चल गया, और मुरारी गुप्ता सोचने लगे कि ये निमाय जो मेरा मित्र है, मेरा कक्षा में साथी है, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, नहीं तो ऐसी विद्या किसी साधारण मनुष्य में कैसे संभव है, हर विषय के बारे में उसको गहरा ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि कोई उसको हरा नहीं सकता, ऐसी ऐसी व्याख्या करता है, ऐसे ऐसे नीति जो तर्क करता है कि कोई इसका सामना नहीं कर सकता, अवश्य ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, और इसने जब मेरा स्पर्श किया तो ऐसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। और फिर मुरारी गुप्ता सोचने लगे कि ऐसे विशेष व्यक्ति को मेरा अध्यापक मानना कोई बुरी बात नहीं है, अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसके सामने हमें झुकने के लिए तैयार होना चाहिए, इसमें घमंड की बात नहीं आनी चाहिए, भले ये बहुत घमंडी है कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में घमंड के लिए इसका कारण भी है, इसकी बुद्धि तो देखो कौन इसका सामना कर सकता है। तो इसलिए फिर निमाई को मुरारी गुप्ता ने कहा ठीक है मैं आपके दल में शामिल होना चाहता हूं, मैं भी आपको तुमको अध्यापक बनाना चाहता हूं। तो उस समय निमाय खुश हुए। और एक सज्जन थे मुकुंद संजय, तो मुकुंद संजय ये भी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। याद रखिए कि अभी तक निमाय ने या महाप्रभु ने अपने भक्ति के लीलाएं आरंभ नहीं की थी, अभी तक तो केवल वो अपने शुष्क ज्ञानी, एक शुष्क तर्क वितर्क करने वाले वाद विवादी का रूप की भूमिका अभी तक धारण किए हुए थे। तो ये संजय, मुकुंद संजय, इनके पुत्र जो थे वो गंगादास पंडित के पाठशाला में विद्यार्थी थे और निमाय के दल में थे। तो हमेशा जब भी समय मिलता था तो निमाय मुकुंद संजय के घर के आंगन में वहां बैठते वृक्ष के नीचे, और ऐसे लगता कि जैसे जब वो अपने सारे दल के विद्यार्थियों को से घिरे हुए बैठ जाते कि एक वीर राजकुमार वहां बैठ रहा है युद्ध के लिए तैयार, और इस तरह से बैठ जाते और फिर किसी भी एक विषय के ऊपर, व्याकरण या साहित्य के विषय के ऊपर, फिर वो अपनी व्याख्या आरंभ करते और बोले जाते सब लोग चकाचौंध रह जाते कि क्या चल रहा है, और सभी लोग केवल मुंह खोल के बैठ जाते सुनने के लिए निमाय की बातें, और इस तरह से ऐसे लगता था कि कोई बड़े विद्वान और दूसरे विद्वानों को लेकर बैठे हैं या चांद सितारों को लेकर बैठा है, इस तरह से लगता था। इस तरह से निमाय का घमंड बढ़ता गया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि इनके ज्ञान में कोई कमी है। लेकिन निमाय का और एक भी स्वभाव का था कि जब भी वो वैष्णवों को देखते तो थोड़े ठंडे हो जाते थे। उनसे छेड़ते तो थे उनको, लेकिन फिर भी आगे पीछे थोड़ा बहुत ठंडे पड़ जाते हैं। और ये आगे चल के जब किशोर अवस्था उनकी आई, इस समय ये जो स्वभाव उनका है ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इस बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे जब हम किशोर लीला का वर्णन करेंगे। तो खैर, ऐसे समय बीतता गया तो महाप्रभु सोचने लगे, मैंने तो संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया है, तो जब संन्यास नहीं लिया है तो मुझे गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहिए। केवल अगर गृहस्थी बनूं और पत्नी न हो तो फिर ये गृहस्थ आश्रम किस तरह का गृहस्थ आश्रम है? तो ऐसे सोच रहे थे। ठीक उसी समय सची माता भी अपने पुत्र निमाय के सौंदर्य को देख रही थी कि अब ये नवयुवक होने के लिए आ रहा है। उस जमाने में बच्चों का विवाह जल्दी कराया जाता था, जैसे आप जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अभी निमाय के विवाह का समय हो गया है। तो उसी समय सची माता को मिलने एक ब्राह्मण आए नवद्वीप के, जिनका नाम था वनमाली घटक। अब ये शादी की व्यवस्था करते थे, जैसे समाज में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो शादी जोड़ने में, जोड़ी बनाने में जो निपुण होते हैं, हमेशा उनका कार्य रहता है इधर से उधर, उधर से इधर करके कुछ ना कुछ जोड़ी बनाकर वो सब ठीक ठाक कर देते हैं। तो वन मालिक घाटक भी ये सेवा करते थे नवद्वीप के निवासियों के लिए। तो वो सची माता के पास आए और कहने लगे, अभी आपका लड़का जवान हो रहा है, अभी उसके विवाह का समय आ गया है, और मुझे एक आदर्श उसके लिए कन्या, एक बहू, आपके लिए बहू एक मुझे ध्यान में है। एक बहुत ही योग्य ब्राह्मण यहाँ पर है नवद्वीप में, और उनकी पुत्री, उनकी कन्या साक्षात लक्ष्मी देवी के समान है, सारे अच्छे गुणों से संपन्न, कोई भी कमी नहीं है उसमें। तो सची माता ने कहा कि मेरा लड़का निमाय, उसके पिता तो गुजर गए और अभी तक छोटा है, थोड़ा और बड़ा होने दीजिए उसे, फिर हम देखेंगे। तो निराश होकर वनमाली घटक वहां से चले गए। लेकिन घर से बाहर जाते जाते उनकी मुलाकात हुई निमाय से, जो कि अपने पाठशाला से लौट के आ रहे थे। तो निमाय ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, किनको मिलकर आए हैं? तो वनमाली जी ने बताया कि हम सची माता को मिलने गए थे, तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मैंने सामने रखा, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने इनकार कर दिया। तो उस समय निमाय ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर जाकर फिर सची माता से कहने लगे, मेरा विवाह का जो प्रस्ताव है तुमने इनकार किया? तो सची माता को हिंट मिल गया, तो बहुत जल्दी उन्होंने संदेश भेज दिया वनमाली जी को कि जल्दी आना मेरे पास में। तो वनमाली घटक जल्दी से आ गए और सची माता ने कहा कि ठीक है, जाके बातचीत आगे बढ़ाओ। और फिर वनमाली घटक गए एक उस ब्राह्मण के पास जिनका नाम था वल्लभाचार्य। बड़े सज्जन थे, विद्वान थे, लेकिन गरीब थे, जैसे ब्राह्मण होते थे। तो उनके पास में गए और कहने लगे कि आपकी कन्या, आपकी पुत्री के लिए मेरे मन में एक योग्य वर है, मैंने ढूंढा है, और वो है जगन्नाथ मिश्र नाम के ब्राह्मण, उनके पुत्र विश्वंभर। वो भी सारे अच्छे गुणों से संपन्न है, बहुत सुंदर है वो, और बड़ा विद्वान है, सारा नवद्वीप उसकी प्रशंसा करता है, बड़ा योग्य वर होगा आपकी कन्या के लिए। तो तुरंत वल्लभाचार्य ने कहा, अरे ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, अगर ऐसा वर मिलना है तो मैं समझता हूं कि यह साक्षात नारायण की कृपा है, नहीं तो ऐसा वर मिलना संभव नहीं है। लेकिन हां, इतनी ही बात है कि मैं बहुत गरीब हूं, दहेज में मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, केवल 5 फल जो शुभ होते हैं ऐसे समय मैं ये दे पाऊंगा। तो वनमाली ने कहा कोई बात नहीं, और तुरंत जल्दी जल्दी से वो चले गए लौटकर सची माता के पास और अच्छा संदेश दे दिया। तो तुरंत शादी की तैयारी होने लगी धूमधाम से। सब जगह उधर उधर तैयारी होने लगे और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में विस्तार में वर्णन करते हैं कि विवाह की व्यवस्था कैसी चली और विवाह का अनुष्ठान कैसे हुआ। अंत में वो बताते हैं कि जो लोग इस विवाह के बारे में गहराई में पढ़ते हैं सुनते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए साधारणतः किसी विवाह के बारे में सुनना इसमें कर्म बंधन बढ़ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे भक्तों को प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये सिनेमा वगैरह सब नहीं देखना, सिनेमा में क्या होता है यही तो होता है। तो ऐसे पुरुष स्त्री का संग ऐसे विवाह के बारे में पढ़ने से हमारे संसार के प्रति बंधन बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। और खास करके तो जो ब्रह्मचारी है सन्यासी है उनको ऐसे विवाहों के बारे में तो पढ़ना है सुनना ही नहीं चाहिए, देखने की बात तो दूर है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि इस विवाह के बारे में जो भी श्रवण करेगा पढ़ेगा सुनेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निमाय तो साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात भगवान है। और भगवान किनके साथ शादी कर सकते हैं? कोई साधारण महिला के साथ में कर सकते हैं? नहीं। और ये जो लक्ष्मी प्रिया थी वो वास्तव में साक्षात लक्ष्मी देवी थी। और बताया जाता है कि ये वास्तव में सीता देवी की अवतार थी जो पहले प्रभु रामचंद्र जी के समय सीता देवी के रूप में आई और जो कृष्ण भगवान के द्वारका लीला के समय जो रुक्मिणी देवी के रूप में आई वही अभी निमाय पंडित के जीवन में लक्ष्मी प्रिया के रूप में आई। और ये वनमाली घटक कौन थे? प्रभु रामचंद्र का विवाह किसने अरेंज किया था? विश्वामित्र मुनि ने। तो ये वनमाली घटक जो है ये विश्वामित्र के अवतार है और ये विश्वामित्र आगे चल के कृष्ण लीला में द्वारका लीला में वो ब्राह्मण बने जिन्होंने रुक्मिणी का संदेश पत्र चुपके से कृष्ण भगवान के पास पहुंचाया था। आपको याद होगा कि रुक्मिणी देवी विदर्भा में रहती थी इसलिए उनका नाम था वैदर्भी, जिस तरह से सीता देवी का नाम है वैदेही विदेह राज की कन्या, उसी तरह से रुक्मिणी देवी विदर्भ राजा की कन्या थी इसलिए उनका नाम था वैदर्भी। तो उनके पिता रुक्मी राजा उन्होंने रुक्म राजा उन्होंने चाहा था कि कृष्ण को मेरी कन्या दे दें, लेकिन रुक्मिणी के भाई जो थे रुक्मी वो चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से होना है। तो रुक्मिणी देवी ने चुपके से एक पत्र भिजवाया था एक ब्राह्मणों के हाथों से कि कृष्ण तक एक चिट्ठी पहुंचाओ और कृष्ण को कहो कि मुझे यहां से ले जाए और मुझसे विवाह करे। तो वही ब्राह्मण अभी चैतन्य लीला में वनमाली घटक के रूप में आए और उन्होंने लक्ष्मी और नारायण को फिर से मिला दिया। वैसे लक्ष्मी नारायण तो युगल जोड़ी है, ये तो नित्य जोड़ी है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये भगवान की लीला होती है। वास्तव में निमाय ने लक्ष्मी प्रिया को देखा था बाल्य लीला के समय। पहली मुलाकात दोनों की इस लीला में तब हुई थी जब एक बार बाल्य लीला के समय, ये तो पौगंड लीला चल रही है, बाल्य लीला के समय निमाय स्नान करने जा रहे थे। आपको याद होगा जब हम बाल्य लीला की चर्चा कर रहे थे तो वो जाके बहुत छोटे छोटे लड़कियों को छेड़ते थे। जब वे छोटी छोटी कन्याएं आती थी शिवजी की पूजा करने के लिए ताकि उनको अच्छा वर मिले, वो जाके शिवजी के जो भी अर्पण करने के लिए पदार्थ थे वो छीन लेते थे, शिवजी के लिए जो हार था वो अपने आप पहन लेते थे, शिवजी के लिए जो भोग था वो खुद खा लेते थे और चंदन अपने ऊपर लगा लेते थे और फिर उन कन्याओं को कहते थे कि मैं ही योग्य वर हूं तुम्हें सबके लिए, इस तरह से उनको छेड़ते थे। तो उसी समय उन दिनों जब एक बार वो नदी में जा रहे थे तो वल्लभाचार्य की कन्या पुत्री बहुत छोटी थी उस समय, तो वो भी वहां आई थी। तो जब दोनों की मुलाकात हुई तो तुरंत एक दूसरे को पहचान गए और उस समय निमाय जैसे दूसरे छोटे छोटे लड़कियों को छेड़ते थे वैसे लक्ष्मी प्रिया सभी कहने लगे, मैं तुम्हारा आराध्य देव हूं, जो भी तुम पूजा करने आई हो शिव जी की वास्तव में मुझे करो। तो तुरंत लक्ष्मी प्रिया ने अपने सारे जो भी पदार्थ वो लाए थे वो निमाई के हवाले कर दिए, निमाई की पूजा की, और फिर निमाई ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि हाँ जिस तरह से गोपियों ने मुझे प्राप्त किया था ऐसी तपस्या करके वृंदावन में, तुम भी मुझे प्राप्त करोगी ऐसे। तो इस मुलाकात के बाद में दोनों की मुलाकात फिर से नहीं हुई और केवल शादी के समय फिर से वो मिले। तो लक्ष्मी नारायण को लाने वाले फिर से ब्राह्मण थे वनमाली खटक। तो शादी का दिन करीब आ गया और शादी के पहले दिन एक अच्छा सा अनुष्ठान का आयोजन किया गया निमाई के घर में, और वहां पर जगह जगह से व्यक्ति आए और महिलाएं आईं, अलग अलग तरह से उनको दान दिया सची माता ने, और ये महिला भी इधर उधर जाके कोई ना कोई सेवा करती थी। अलग अलग ब्राह्मण आए और हर कोने में बैठकर वो लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और बीच में गौर सुंदर निमाई बैठे थे, पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहे थे, और इस तरह से सभी लोग आश्चर्यचकित होकर निमाई का सौंदर्य देख रहे थे। और फिर अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, अगले दिन विवाह का दिवस था, और बंगाल में प्रथा है कि विवाह रात को होते हैं, बीच रात को होते हैं विवाह। दूसरे जगह में जो है पश्चिम देशों, पश्चिम भारत में, दक्षिण में इत्यादि दिन के समय होता है, लेकिन बंगाल वगैरह में रात को होता है। तो उस दिन सुबह सुबह भी अलग अलग तरह से सारे जो श्री श्री राधा गोकुलानंद की तो तैयारियां होने लगी, निमाय भी अपने कार्यों में व्यस्त रहे, वल्लभाचार्य भी आए थे वहां, और वहां भी जो भी अनुष्ठान हुए, जो भी क्रियाएं करनी थी, विधि विधान थे, उनका पालन हुआ, बिल्कुल शास्त्रोक्त ढंग से हुआ, अधिकृत पद्धति से, वैदिक पद्धति से सब कुछ हुआ। और फिर समय आया संध्या का, और निमाई जो कि वर थे वो वल्लभाचार्य के घर की ओर बढ़े। ये प्रथा है बंगाल में कि शादी विवाह जो है वो लड़के वालों के यहां होती है। तो निमाई अपने पालकी में हुए चले गए और वहां पे उनका धूमधाम से स्वागत हुआ, और वहां पर वल्लभाचार्य उनको आदर सत्कार किया जैसे कि शास्त्रों में बताया है, और फिर उनको स्थान में रखा गया। सभी लोग देख रहे थे निमाई के सौंदर्य को। और फिर उस शादी में जैसे प्रथा थी कि कन्या को उठाया जाता है और उठाकर उनको हाथ में उठाकर उनको वर के उसका परिक्रमा कराया जाता है 7 बार, और फिर यज्ञ के सामने बिठाकर मंत्रों का उच्चारण, और फिर स्वाहा होकर फिर हार एक दूसरे को पहनाते हैं, और आप सब इसके बारे में ज्यादा जानते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। तो वो सब अनुष्ठान जो हो गए खत्म हो गए, और फिर रात बीत गई और फिर घर जाने का समय आ गया, और अगले दिन रात को वहीं पर रहे निमाई, और अगले दिवस फिर अपने घर में वो लौट कर आए। तो वहां उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग थे, और नवद्वीप के सारे महिलाएं वह आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे पालकी में आते आते, और कह रहे थे कि ये लगता है कि अवश्य इस लड़की को शिवजी का आशीर्वाद मिला होगा कि ऐसा वर उसको मिला है, बल्कि मुझे लगता है कि ये साक्षात दोनों शिव पार्वती होंगे। कोई कहने लगे कि ये तो नहीं नहीं सीताराम की तरह लगते हैं ये तो, कोई कहने लगे ये तो लक्ष्मी नारायण की तरह लगते हैं, इनकी कृपा प्राप्त हुई नहीं तो साक्षात शायद ये लक्ष्मी नारायण होंगे। इस तरह से सारे महिला वहां जो थे वो प्रशंसा करते रहे दोनों के। और फिर निमाई और लक्ष्मी प्रिया घर में आए, और फिर अपना वहां उस नए घर में लक्ष्मी प्रिया रहने लगी। विवाह के बाद सारे घर में सुख शांति होने लगी, और सची देवी इधर उधर कई अद्भुत दृश्य देखने लगी। कभी कभी बीच बीच में अद्भुत एक तरह का एक रोशनी आने लगी। ये रोशनी कहां से आती है उनको पता नहीं चला। कभी कभी ऐसे लगता था कि निमाई की बाएं ओर से रोशनी है, फिर वो रोशनी अदृश्य हो जाती थी। और फिर पता नहीं कहां से एक ऐसा सुगंध आता था, और इस सुगंध का स्रोत कहां था सची माता ढूंढ नहीं पाती थी। फिर सची माता के मन में संशय हो गया कि शायद मेरी जो बहू है वो लक्ष्मी देवी हो गई, नहीं तो ये सब कैसे हो सकता है, ये सारे लक्षण जो है तो लक्ष्मी देवी के लक्षण है। तो उनके मन में संशय आया कि मेरी बहू ये साक्षात लक्ष्मी देवी है, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि उनका पुत्र कौन है। उनका पुत्र साक्षात श्री हरि है, वो नहीं जान पाए, क्योंकि निमाय ने अपने अस्तित्व को अभी तक प्रकट नहीं कराया था। अभी तक वो केवल तर्क वितर्क में, वाद विवाद में, व्याकरण और ज्योतिष में पड़े हुए थे, अपने भक्त अवतार को उन्होंने प्रकट नहीं किया था। तो इस तरह से विवाह हो गया निमाय का और लक्ष्मी प्रिया का। और इस समय चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित का जो पौगंड लीला है वो समाप्त हो गया। इस तरह निमाय भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में आकर ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं प्रदर्शित किए, जिनका श्रवण कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होता है। तो लीलाएं सुंदर ढंग से चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ में है, इनको हमें बार बार सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इसके साथ में पौगंड लीला का वर्णन समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने बाल्य लीला और पौगंड लीला का वर्णन किया है। आज शाम को हम चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में सुनेंगे और थोड़ा कुछ ये भी सुनेंगे कि किस तरह से वो प्रकट हुए, उनके प्राकट्य की लीला, उनके अवतार की लीला आज शाम को सुनेंगे। और कल सुबह और शाम हम महाप्रभु की किशोर लीला का श्रवण करेंगे। तो इस साल गौर पूर्णिमा के महोत्सव में आदि लीला भी शायद समाप्त नहीं हो पाएगी, जितना भी हो आदि लीला का, आगे चल के अगले वर्षों में मध्य लीला और फिर आगे चल के अंत लीला तक पहुंचेंगे। आशा करते हैं कि जब तक आगे आगे सालों में ये लीला चलती रहेगी, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, इसलिए और भी लीलाएं आती रहेंगी, उनका श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि माया का निज कार्य क्या है?
माया का कार्य ये है कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से जो ईर्ष्या करते हैं, उनको हमेशा अंधकार में रखना, क्योंकि भगवान के धाम में जाने का अधिकार केवल उनको है जिनका हृदय ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, भोग की भावना से मुक्त है। तो भगवान की माया शक्ति उन लोगों के लिए है, उनको अंधकार में रखने के लिए। जिस तरह से सरकार जेल कैद खाने का डिपार्टमेंट बनाती है उन लोगों को कैदी रखने के लिए जो कि सरकार के नियमों को तोड़ती है, उसी तरह से भगवान ने अपनी माया शक्ति बनाई है उन लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में डालने के लिए जो कि जबरदस्ती भगवान के विमुख होते हैं, जानबूझकर जो भक्ति में नहीं आते हैं, उनको सबको बंधे हुए अवस्था में रखने के लिए भगवान ने अपनी माया शक्ति को बनाया है।
आत्मा का निज कार्य क्या है?
आत्मा का निज कार्य क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। और दास का कर्तव्य क्या होता है प्रभु के प्रति? सेवा करना, और कोई कार्य नहीं होता है। ममाई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने करिष्यति। श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि अर्जुन ये जान लो कि सारे जो जीव हैं मैं मेरे अंश हैं, सनातन अंश हैं, और जो जीव मुझे भूल चुके हैं, संसार के चक्र में फंसे हुए हैं और मेरे प्रकृति के कड़क नियमों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, अपने स्वभाव को, स्वरूप को जान लेते हैं, वो इस कड़े संघर्ष के दुनिया से छूटकर भगवान के धाम में जाकर उनका नित्य संग प्राप्त करते हैं और नित्य आनंद का जीवन प्राप्त करते हैं।
तो एक एक लोग ऐसा होते हैं कि भूत पिशाच की भी पूजा करते हैं और भगवान की भी पूजा करते हैं, तो वो कौन से लोक में जाते हैं?
भूत प्रेत की पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो उनका चेहरा आधा भूत जैसा होगा, आधा भक्त जैसे होगा। संसार में अब देखते हैं कि लोग भूत जैसे दिखते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको न जाने क्या जीवन का उद्देश्य है, किसी को नहीं मालूम क्या कहां से आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये भी नहीं मालूम लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जैसी पूजा उपासना करता है उस हिसाब से उसकी अंतकाल में मृत्यु के क्षण में उसकी चेतना होगी, और जैसे उसके मृत्यु के समय चेतना होगी वैसे ही उसको अगले गति प्राप्त होगी। तो उसने भूत प्रेत की पूजा भी की है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की है, तो जोनों में से जो भी शक्तिशाली है तो उसके अंत में रहेगा दिमाग में और वो गति की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई भूत प्रेत की भी पूजा करता है कृष्ण भगवान के साथ साथ, तो इतना निश्चित है कि इस जीवन में तो जब तक कि वो भूत प्रेतों की पूजा न छोड़ देता है तब तक वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का सार ये है कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दे दो और मेरे शरण में आओ। किस तरह से मेरे शरण में आओ? क्या भगवान ये कहते हैं कि थोड़ा शरण भूतों का ले लो और थोड़ा मेरा ले लो, थोड़ा चंडी देवी का ले लो, थोड़ा उनका ले लो और थोड़ा मेरा ले लो? नहीं, भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। एकम मतलब केवल, केवल मेरा शरण लो हे अर्जुन। ये मेरे सारे गीता का उपदेश जो मैंने दिया है तुम्हें, इसका सार है ये। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने। हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, मन ही मन मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, भजन करो, मेरी उपासना करो, और इस तरह से करते रहोगे तो निश्चित रूप से, असंशय रूप से तुम जान लो कि तुम मेरे पास आओगे। भगवान ये नहीं कहते कि मेरा भी स्मरण करो, भूत प्रेतों का भी स्मरण करो, नहीं, केवल मेरा स्मरण करो। तो जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है साथ साथ भूत प्रेतों की भी भक्ति करता है, अगर वो भाग्यशाली रहा और उसे भक्तों का संग मिल गया तो फिर वो धीरे धीरे से भूत प्रेतों की पूजा वगैरह करना छोड़ देगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे से प्रगति करते हुए जिस दिन वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, चाहे इस जन्म में, चाहे एक जन्म बाद, चाहे पांच जन्म बाद, उस समय वो अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम में लौट के चले जाएगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ अवतरित होने के लिए बाह्य तीन कारण है, तो इसमें तीसरा कारण कौन सा है?
हाँ, हम इस प्रश्न के लिए इंतजार कर रहे थे कि कौन पूछेगा, इससे हम जान सकें कि आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। हमने प्रवचन की शुरुआत में कहा था कि भगवान के अवतार लेने के बाहरी तीन कारण हैं और गुह्य तीन कारण हैं, और हमने ये भी बताया था कि आज हम केवल इन बाहरी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में हमने केवल दो कारणों के बारे में चर्चा की। तो तीसरा कारण क्या है अगर ये सुनना है तो आपको कल सुबह आना होगा। कल सुबह यहां प्रवचन 7:45 होगा, उस समय हम तीसरा कारण क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, ठीक है?
जय श्री कृष्ण।